नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी TET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।